जाड़ा बहुत अधिक पड़ने लगा था। दिन में दोपहर को कड़ी धूप भी पड़ती, दुशाले ओढ़ लेने को जी चाहता था। अन्य ऋतुओं में जो लोग केवल बुने हुए कपड़े पहनते थे, वे ही शिशिर में कश्मीरी शाल और पंजाब के लिहाफों की खोज में लग गए। ग्रीष्म के आते ही वे ग्लासगो की मलमल तक दौड़ लगाने लगते हैं। जाड़े के कारण सारा शरीर मानो फट पड़ा और प्रतिदिन तेल लगाने की आवश्यकता पड़ने लगी। जमा हुआ घी होठों को अत्यंत प्रिय लगने लगा। खेतों में फसलें कट चुकी थीं, अनाज के ढेर लग चुके थे। हेमंत के बीत जाने पर भी शिशिर में कुछ कुछ ओस पड़ रही थी। धान की फसल कट चुकने के बाद कटे हुए तनों पर रात भर शबनम पड़ती रहती, जिसके कारण किसानों के पांव घुटनों तक गीले हो जाते थे। जिन किसानों के पास पिछले वर्ष का अनाज नहीं बचा था, वे नई फसल से अनाज निकालने लगे थे। गीली जमीन पर खलिहान बनाना आसान था। शिशिर के कारण सारा जंतु समुदाय मानो बूढ़ा बन गया था। शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं और देह में कपकपी होने लगी थी। पटसन के खेतों में पौधे उगाए थे। एक दिन सवेरे गणाचारी स्नान आदि के उपरांत तिलक लगाकर सफ़ेद साड़ी पहनकर निकली। उसके हाथ में नीम की एक सूखी टहनी थी। पता नहीं सूखी टहनी लेकर वह क्यों निकली थी। जैसा कि धर्माराव ने सोचा था, रामेश्वरम का गांव में न रहना गणाचारी की प्रसन्नता का कारण बना। वह कोठी के आगे से निकल गई और नगरपालिका भवन के सामने जा खड़ी हुई। नीम की उस सूखी टहनी को उसने वहां छोड़ दिया और भवन की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखने लगी। चंद्रा रेड्डी भीतर से आ रहा था। उसके निकट आते ही गणाचारी ने नीम की टहनी को पाँव से हिलाया। यह देखकर चंद्रा रेड्डी सोचने लगा, इस बुढ़िया की कहानी समझ में नहीं आती। आखिर इसे हमारी नगरपालिका पर इतना गुस्सा क्यों है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? इसे कुछ कहूँ तो पता नहीं मुझ पर क्या बीतेगी। पहले जब मेरे पाँव में सूजन आई थी तो बेचारी ने मेरी बड़ी सहायता की थी। यह मेरा अध्यक्ष पद केवल झूठे गौरव का सूचक जान पड़ता है। इससे मुझे रत्ती भर भी लाभ नहीं। लोगों पर उपकार करने का दम भरते हुए हम प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास करते हैं, पर उनसे कोई लाभ नहीं होता। चार दिन बाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव भी आने वाला है। भगवान ही जाने कि उससे क्या लाभ होगा। लेकिन इतने समय तक अध्यक्ष पद पर रहकर आज मैं इस नगर पालिका का खोखलापन प्रकट करता हूँ तो यह मेरी भूल मानी जाएगी। यह गणाचारी सारे गांव की भलाई को अपने सिर पर क्यों लेती है? किसी और गांव में ऐसी बला नहीं है। सारे देवी देवता हमारे ही गांव में क्यों अड्डा जमाए हुए हैं? कहावत है कि कोई मलेच्छ किसी देवी का अपमान करने लगा तो देवी ने किसी गरीब किसान से बदला चुकाया। यह नई सभ्यता सारे देश में शाखाओं और उपशाखाओं में फैल रही है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना बड़ी उत्कृष्ट है। गवर्नर बहादुर आदि ने उसकी प्रशंसा की है। नगरपालिका के उपकारों में से यह एक है। जान पड़ता है कि हमारे शहर के दिन फिरे हैं। सोचता सोचता चंद्रा रेड्डी अपने घर पहुंचा। वहां नगन्ना साहू का बेटा वेंकट रत्नम बैठा था। रेड्डी के आते ही उसने उठकर नमस्कार किया। रेड्डी ने पूछा, क्यों जी, यह सब चिंता केवल तुम्हें और हमें पड़ी है? वेंकट रत्नम हाँ हाँ कहकर चुप हो गया। रेड्डी ने पूछा, कैसे आना हुआ? वेंकट रत्नम कहने लगा, कुछ नहीं जी, मंदिर के सामने मड़ैया लगवाना चाहते हैं। भजन सप्ताह शुरू किया है। पास के कोठे में रसोई का प्रबंध है। भजन, नाटक, भोजन आदि सब वहीं पंडाल में होंगे। कोठी की सड़क पर पंडाल लगेंगे। चंद्रा रेड्डी, बाप रे, 200 गज तक पंडाल लगेंगे? वेंकट रत्नम, जी हाँ, नाटक, कथा, उत्सव, मेला आदि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लाखों की आमदनी होगी। चंद्रा रेड्डी, फिर लगे हाथ स्वामी का कल्याणोत्सव भी क्यों नहीं रचाते? वेंकट रत्नम, उसके लिए जमींदार साहब की रजामंदी चाहिए। सुनते हैं कि भगवान पर उनकी उतनी श्रद्धा नहीं है। पता नहीं यह बात कहाँ तक सच है। चंद्रा रेड्डी, आखिर बनिए हो न। मन की बात तुमने कह भी दी और बड़ी मृदुता से उस पर जोर भी दिया। वेंकट रत्नम, जी हाँ जी हाँ। चंद्रा रेड्डी, तुम्हारे पिताजी भी इसी तरह बात बात पर जी हाँ कहा करते थे। खैर, पंडाल लगवा लो, दरख्वास्त दे दो, कल की बैठक में मंजूर करेंगे। अनुमति एकदम मुफ्त नहीं मिलेगी। जनता का काम है सो थोड़ा ही टैक्स वसूल करेंगे। प्रतिदिन 4 आने से अधिक नहीं देना पड़ेगा। वेंकट रत्नम लौट गया। उसके संतान होती पर होते ही मर जाती। अब तक 3 लड़कियां और 2 लड़के हुए और मर गए। उसकी पत्नी कई नीम के वृक्षों और पीपल के पेड़ों की परिक्रमा कर चुकी थी। प्रतिदिन हनुमान जी के पास नारियल फोड़ती थी। इस समस्या पर कई महात्माओं से सलाह ले चुकी थी। कोई कहता भूत है, कोई कहता देवी है। न जाने कितने देवताओं के पास मन्नतें मांगी गईं। रामेश्वरम की यात्रा की गई, फिर भी जो संतान होती वह जीवित न रह पाती। एक वृद्ध ब्राह्मण से पूछा गया, उसने कहा, कुछ ग्रह तुम्हारे विरुद्ध हैं, उनकी शांति तथा भूत तृप्ति होनी चाहिए। कहते हैं कि बनियों का सारा खर्च ब्याह में होता है, आवश्यकता पड़ने पर उनके समान खर्च करने वाला और कोई नहीं होता। बाप की लाखों की कमाई और तंबाकू के व्यापार से की गई खुद वेंकट रत्नम की कमाई उसके घर निकम्मी पड़ी थी। उसके मरने के बाद इस संपत्ति का उपभोग करने वाला कोई न था। उसकी पत्नी ने उसे प्रोत्साहित किया। वेंकट रत्नम ने बड़े पैमाने पर भजन सप्ताह का आयोजन किया। कूचिपुड़ी वाले आए, दिवा वेश धारण करने वाले कलाकार आए, भजनीकों की टोलियां आईं, हरिकथा सुनाने वाले कीर्तनकार आए। सारा शहर इसी कोलाहल से गूंज उठा। 7 दिन तक सार्वजनिक भोज चलता रहा। ब्राह्मणों के लिए अलग, वैश्यों के लिए अलग और अन्य लोगों के लिए अलग भोजन की व्यवस्था थी। बड़ी बड़ी हाड़ियों में खाना पक रहा था। गंगाल गर्म हो रहे थे। पके हुए पदार्थों के ढेर चटाइयों पर लग रहे थे। साग भाजी दाल आदि के ढेरों से रसोई की मड़ैया भर गई। पंडाल में भजन चल रहे थे। दूर से भजनीक आए हुए थे। ओंगोल से एक पुरानी टोली आई। पाद टिप्पणी में, ओंगोल आंध्र के गुंटूर जिले की एक तहसील है, जहाँ नृत्य गान संबंधी प्राचीन परंपराओं के पारंगत कलाकारों के वंश विद्यमान हैं। आंध्र प्रांत में 2-3 शताब्दियों से इस टोली का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। ये भजनीक सारी रामायण भजनों के रूप में गाते थे। भजनीकों की संस्थाएं जब जीवित थीं, तब उन भजनों को अध्यात्म रामायण के समान गौरव प्राप्त था। अब उस नामांकित वंश के लोग इधर उधर बिखर गए हैं, उनके भजनों को लोग भुला चुके हैं। तथापि उस वंश के कुछ बचे खुचे लोगों ने अपनी वह विशिष्ट भजन शैली आज तक थोड़ी बहुत मात्रा में बचा रखी है। उनके भजनों में भावों की सरसता, धारा की शुद्धि और भाषा की रम्यता बहुत पाई जाती है। एक दिन दोपहर को वे भजन गा रहे थे। 25 वर्ष की आयु वाला उस वंश का एक युवक नृत्य करता हुआ तरंगे गाने के बाद रामायण संबंधी एक भजन गाने लगा। पाद टिप्पणी में, आंध्र के महान वाग्गेयकार स्वामी नारायण तीर्थ विरचित संस्कृत यक्षगान नाटक श्री कृष्ण लीला तरंगणी के मधुर गीत तरंगे कही गई है। हनुमान जी मंदोदरी को देखकर सोचने लगे कि यह स्त्री प्रभु रामचंद्र की रानी सीता नहीं हो सकती। यदि यह सीता होती तो इस प्रकार आभूषण से क्यों लदी होती। यह था उस भजन का सारांश। भजनीक नियोगी ब्राह्मण थे। पाद टिप्पणी में, आंध्र के ब्राह्मणों की एक शाखा है नियोगी। उन्होंने प्राचीन काल से तेलुगु भाषा को पाला पोसा था। उनकी प्रतिभा से आंध्र साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ। भजन किले से सारा पंडाल अभिभूत हो गया। जब से भजन सप्ताह प्रारंभ हुआ, हरप्पा ने पंडाल में ही अड्डा जमा रखा था। देवदासी 8ों पहर मंदिर में रहने लगी थी। वह सोच रही थी कि इन महान कलाकारों के आगे स्वयं उसका सीखा हुआ सारा नृत्य लेश मात्र है। एक से एक कलाकार निष्णात थे। एक पंडित ने बाल गोपाल तरंग गानी शुरू की। उसे सुनकर ऐसा लगा मानो सारे पंडाल में कोपले फूट आई हों। बाल गोपाल मामुद्धर कृष्ण परम कल्याण गुणाकर, नीरद नील कलेवर कृष्ण निरूपम कौस्तुभ कंधर। इन तरंगों का गायन भोजन के बाद रात के 11 बजे प्रारंभ हुआ। सवेरा हो गया, सूर्योदय हो रहा था, परंतु तरंगों की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई। मार्दंगिक का हाथ मृदंग पर नहीं बज पाता था। वायलिन वादक कभी का जवाब दे चुका था। गायक की प्रतिभा सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। किसी ने कहा, हे महाशय, अपनी विद्या में ब्रह्मवेत्ता हैं, कोई वादक उनका साथ नहीं दे सकता। उनका गायन किस क्षण किस नई दिशा में चलेगा कोई नहीं जानता। वे सदा विषम गति से ही प्रारंभ करते हैं, विषम ताल गतियों में ही गाते हैं। उनके गायन की मोड़े कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े मृदंग वादक उनके पास आकर ताल की नई नई चालें सीखते थे। दिन निकल आया। अन्नमयादिषु पंचसु त्वामंतरमानंद विग्रहम उन्नत फलम आमनंतिते जगदूदयादिषु लक्षितम तद्धि त्वमेवासी तद्धि त्वमेवासी तत्सर्वमे तत्त्वमेवासी नूनम। यहाँ तक गायन पहुँचा था कि इतने में दीपों की कांति विवर्ण हो गई। श्री वेणुगोपाल स्वामी, गिरिका और हरप्पा अपलक दृष्टि से देख रहे थे। उस दिन दोपहर को धर्माराव बाजार से गुजर रहा था। कल रात नींद न आने के कारण उसकी आंखें लाल हो चली थी। बाजार में उसे चंद्रा रेड्डी देख पड़ा। धर्माराव, कल रात आप आए थे? चंद्रा रेड्डी जी, नहीं, सुना है कि गायन बहुत अच्छा था। धर्माराव, क्या बताऊं, कहते हैं कि वे महाशय नृसिंह के उपासक हैं। पता नहीं उस दुबले पतले शरीर में इतनी क्षमता कहाँ से आई। संभवतः यह सब उपासना की शक्ति है। नहीं तो कल रात उन्होंने जो श्रम किया था उसके कारण एक सप्ताह तक बिस्तर पकड़ना पड़ता। क्या यह सच है कि आप अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लाने वाले हैं? चंद्रा रेड्डी: जी हाँ, शायद परसों हमारी बैठक होने वाली है। धर्माराव: कल रात जिन महाशय ने गाया था उन्हें मासिक वेतन पर इस शहर में नियुक्त कीजिए। चंद्रा रेड्डी: प्राथमिक शिक्षा का उनसे क्या संबंध है? धर्माराव: शिक्षा से आपका क्या मतलब है? अक्षर सीखना और टेढ़ा मेढ़ा लिख देना ही क्या शिक्षा है? शिक्षा प्रणाली में संगीत और लय का ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। प्राचीन काल में ऐसे भजन और नाटक जहाँ तहाँ बड़ी संख्या में होते थे, जिन्हें देखकर लोगों में संगीत तथा लय का ज्ञान सहज ही उत्पन्न हुआ करता था। आजकल के नाटकों में न कोई स्वर होता है और न लय। जहाँ देखो गलत स्वर और हल्के तान सुनने को मिलते हैं, जिनसे हृदय में उन्नत भावों का उदय नहीं होता। ऐसा भावोदय करना इन्हीं प्राचीन संस्थाओं द्वारा संभव है। हमारे पुरखे केवल पढ़ने और लिखने को शिक्षा नहीं मानते थे। सच्ची शिक्षा प्राचीन काल में ही विद्यमान थी, आजकल उसका कहीं पता नहीं है। इसी से कहता हूँ विद्या मोक्ष की पर्यवसायिनी होती है। इतने में नगरपालिका के कुछ और सदस्य आ पहुँचे और चंद्रा रेड्डी वहाँ से चला गया। रात को एक शास्त्री जी पुराण सुनाने वाले थे। धर्माराव ने कॉलेज के विद्यार्थियों को निमंत्रण दिया। महापंडित शास्त्री गोपिका गीतों का पुराण सुना रहे थे। कितने उदात्त थी वह कथा। उन गीतों में उपनिषदों के मर्म भरे पड़े थे। उनके निरूपण के लिए शास्त्री जी ने पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा से उद्धरण प्रस्तुत किए। उनके मुखमंडल पर वैदिक सरस्वती अपने दिव्य तेज के साथ विराजने लगी। कॉलेज के विद्यार्थी थोड़ी देर सुनकर आपस में फुसफुसाने लगे, यह सब अजब ढकोसला है। फिर वे वहां से चल दिए। दूसरे दिन पुरंजनोपाख्यान का पुराण सुनाया गया। उन शब्दों में कैसी अनुपम माधुरी थी, व्याख्यान का कैसा अनूठा ढंग था। शास्त्री जी ने मानो सारा अद्वैत उस व्याख्यान में उड़ेल दिया। उपनिषदों, पुराणों तथा वेदांगों के निगूढ़ अर्थों को इकट्ठा करके उपस्थित किया। धर्माराव सोचने लगा, ऐसी महान संस्था आज नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। पुराण कथाओं की कल्पलता है। बच्चों को कितने ही ग्रंथ पढ़ाओ पर पुराण गाथाओं की भांति उनकी समझ में वे नहीं आएंगे। समझ में आए भी तो बालकों के हृदय पर इतनी गहरी छाप किसी और ग्रंथ की नहीं पड़ेगी। नेत्रेंद्रियों की अपेक्षा श्रवणेंद्रियों द्वारा विद्या का अधिक सुगमता से बोध होता है। श्रवणेंद्रियां दिव्य तथा भौम भागों के बीचों बीच होती है। इसी से प्राचीन विद्याओं का विभिन्न इंद्रियों द्वारा बोध हुआ करता था। वेद श्रुति बन गया। पुराणों को सुनते सुनते सुनाने वाले की शक्ति के अनुसार श्रोता के मन पर उनका प्रभाव पड़ता है। एक लोकज्ञ पौराणिक अपने पुराण कथन में भाव के अनुरूप अभिव्यक्ति का आयोजन किया करता है, वह भी एक नाट्य विशेष है। जिन श्रोताओं के मनोभाव अपरिपक्व हैं वे पुराण सुनकर उन भावों का यथार्थ स्वरूप समझ पाते हैं। यह शिक्षा का निर्दिष्ट मार्ग है। ऐसी ही विद्या सार्वजनिक होती है। कहते हैं कि एक बार भूतपूर्व जमींदार हरप्पा के पास कई महापंडित आए। उनमें से एक वैयाकरण, दूसरा तर्क पंडित और तीसरा पूर्व मीमांसक था। हरप्पा ने चौथे ब्राह्मण से पूछा, महाशय आप किस शास्त्र के पंडित हैं? ब्राह्मण बोला, मैं पौराणिक हूँ। यह सुनकर सब लोग उपहास करने लगे। पौराणिक ने कहा, हंसने से काम नहीं चलेगा, पुराण सुनकर देखिए। हरप्पा ने सभा का आयोजन किया। महाभारत का पुराण प्रारंभ करने से पहले पौराणिक ने कहा, यहाँ की सारी तलवारें एक कमरे में बंद करवाइए और कमरे की चाबी मुझे दिलवाइए। यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु ब्राह्मण ने अनुरोध किया, आजकल अगर कोई ऐसी इच्छा प्रकट करे तो लोग तुरंत उसे पागलों की श्रेणी में गिनने लगते हैं। परंतु हरप्पा बड़े श्रद्धालु थे। उन्होंने गंभीरतापूर्वक सोचा और सारे हथियार एक कमरे में बंद करवाकर कमरे की चाबी पौराणिक को दिलवा दी। पुराण प्रारंभ हुआ और थोड़ी ही देर में कौरवों और पांडवों की पारस्परिक द्वेषाग्नि श्रोताओं तक फैल गई। श्रोता दो पक्षों में बट गए और इधर उधर हथियार ढूंढने लगे। खैर हुई कि कमरे की चाबी पौराणिक के पास थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पौराणिकों की महत्ता ऐसी होती है, हृदयगत भावों की तीव्रता वे ही बढ़ा सकते हैं। आजकल की पढ़ाई से वे भाव नीरे जंगल की तरह अनाप शनाप उमड़ आते हैं। इसी से देश की बड़ी भारी हानि हो रही है। देवदासी ने कई दिन रात रात तक तरंगे सुनी, पुराण सुने। दिन रात वह बैठी ही रहती। रत्नगिरी बार बार भोजन के लिए बुलाती पर उसे खाने पीने की सुध ही नहीं थी। मंदिर में चढ़ाए हुए नैवेद्य के अतिरिक्त वह कुछ नहीं खाती थी। भोजन के समय मंदिर में आ बैठती और भोजन के उपरांत फिर भजन सभा में। अरुंधति और अथंतरी आठों पहर देवदासी के साथ लगी रहती। 2 दिन के उपरांत वे भी देवदासी को खिलाने की चेष्टा करने लगीं। हरप्पा भी यही भोजन कर रहा था। उसने 7 दिन तक कोठी का खाना खाने से इनकार कर दिया। लोग सोच रहे थे यह प्राचीन काल का व्यक्ति है। रात को यक्षगान का आयोजन हुआ। पाद टिप्पणी में है, आंध्र में जक्कू कोष्टक में यक्ष नामक एक जाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य गीतात्मक कला प्रदर्शन यक्षगान कहलाता है। एक अपरिचित लिंगायत सज्जन ने त्रिपुरासुर संहार का यक्षगान किया। उनके सिर पर गोल पगड़ी थी, कंठ से पांव तक ढीला अंगरखा लटक रहा था। नृत्य करते समय अंगरखे की तहें खुल जाती और घूमता तंबू सा बन जाता। एक कपड़े से कमर कसी थी, जिसके कारण वह घूमता तंबू कभी इधर और कभी उधर डोलता दिखता था। कंधे पर दुपट्टा था, पांव में घुंघरू थे, दाहिने अंगूठे में कांसे के कड़े थे जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी। यह भी एक विशिष्ट कला होती है, भाव के अनुरूप राग और राग के अनुरूप लय। भाव के साथ साथ गाने का ढंग भी बदल जाता था। जब शिवजी युद्ध में बाणों का प्रयोग और उपसंहार कर रहे थे और असुर हजारों की संख्या में काम आ रहे थे, तब गाने के साथ साथ ताल भी अत्यंत वेग से मुखर हो उठे। उस ध्वनि से ऐसा आभास हुआ कि सचमुच शत्रुओं का संहार हो रहा है। प्राचीन काल में महान संस्थाओं द्वारा जिन महापुरुषों ने इस कला का प्रचार किया था, वे सब आज खाने के लिए तरस रहे हैं। धर्माराव सोच रहा था, चाहे बाजार का नाटक हो या भजन, तरंग हो या यक्षगान, प्रत्येक राग में एक विशिष्ट भाव भरा जान पड़ता है। आज भी देश में भूप यमन आदि राग गाए जाते हैं। राग वही है, पर गाने का ढंग एकदम भिन्न है। इस नए ढंग को कुछ लोग अत्यंत मधुर मानते हैं। पता नहीं इसमें मधुरता है भी या नहीं, परंतु पुराने ढंग में भावों की जो स्पष्टता थी वह इसमें नहीं है। पुराने ढंग के गाने का आज कई लोग उपहास भी करते हैं। नएपन का यह अंधाधुंध अनुकरण सभी विद्याओं को कीट बनकर खाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अंधा बैल खेत में घुस पड़ा है। जीवन एक कला के समान होता है, कोई वस्तु प्रयोजनहीन नहीं होती। कला की एक दूषित व्याख्या निकल पड़ी है, जिसके अनुसार कला कला के लिए ही होती है। धर्मों में नास्तिकता का जो स्थान है, कला संबंधी सिद्धांतों में इस सिद्धांत का स्थान वही है। कहते हैं यह जग ऐसा ही है, इसका ऐसा रहना ही परमार्थ है। गाना सुनते समय कहा जाता है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसी से मैं सुन रहा हूँ। यह बात निरे अज्ञान की द्योतक है। सचमुच गायक अपने गायन में एक विशिष्ट भाव का निरूपण कर रहा है। संगीत, कला, कविता, इन सब में विशिष्ट भावों का संचार होना चाहिए, तभी उनमें रस निष्पन्न होता है। पहले यह भी जान लेने की आवश्यकता होती है कि भाव किसे कहते हैं। भजन सप्ताह पूरा हुआ। गांव के सारे लोग 7 दिन तक यहीं खाना खाते रहे। बड़े बूढ़ों को बीते दिनों का स्मरण हो आया। एक दिन कबीर धर्मराव के घर आया। धर्मराव की आयु 30 वर्ष की हो चुकी थी, पर आज तक उसने कबीर को अपने घर आते कभी नहीं देखा था। कबीर अब पहले जैसा नहीं था, कुछ बूढ़ा हो चला था। उसका वेश आधुनिक बन गया था, परंतु मन अब भी प्राचीन था। देवदासी के नृत्य के समय सुर लगाने वाला कबीर आज नगरपालिका का सदस्य बना था। धर्माराव ने कबीर को भीतर ले जाकर उसके आने का कारण पूछा। कबीर, बाबूजी कहते हैं कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की कोई योजना आने वाली है। कल ही हमारी बैठक है, शायद उसके बारे में मुझे कुछ कहना पड़े। इसी से उसका स्वरूप जान लेने के लिए आपके पास आया हूँ। धर्माराव हंसकर, ठीक है, क्या जानना चाहते हो? कबीर, क्या यह शिक्षा आवश्यक है? पढ़ना लिखना, आंकड़े जोड़ना घटाना आदि सीखने से लोगों को क्या लाभ होता है? धर्माराव, लिखना आ जाए तो कर्ज लेकर नोट पर हस्ताक्षर करने में सुविधा होती है। पढ़ना सीखने तो यह जानने में सहूलियत होती है कि हम जहाँ जाना चाहते हैं स्टेशन मास्टर ने वहीं का टिकट दिया है या और कहीं का। यह सुनकर कबीर हंस पड़ा। धर्माराव आगे कहने लगा, ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं। देश में उद्योग धंधे समाप्त हो चुके हैं, इसी से लोगों को यह भ्रम हो गया है कि इस नई पढ़ाई से कुछ रोजी मिलेगी। घरेलू उद्योगों की शिक्षा में बच्चे को पढ़ाई लिखाई के बिना ही अपनी खानदानी दस्तकारी का ज्ञान घर बैठे हो जाता है। लड़का लगभग 16 वर्ष की आयु तक अपने घर का उद्योग सीख लेता है, उससे उसकी आजीविका चलती है। आज घरेलू उद्योग नष्ट हो गए हैं। पुस्तक की पढ़ाई समाप्त होने पर ही किसी उद्योग की शिक्षा प्रारंभ होती है। सारे लोग पढ़े लिखें और सारे लोगों की जीविका उनके इस पढ़ाई पर ही चले, यह असंभव है। सबको मुलाजिमत कहाँ से मिल सकती है? आधुनिकता के लोभ में हम अपनी जातियों से द्वेष करने लगे और जातिगत उद्योगों को त्याग दिया। इसी से आज हमारे ऊपर यह संकट आया है। जब सब लोग समान हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि जातिगत उद्योगों का त्याग क्यों किया जाए। हमारे देश में किसान अनपढ़ हैं। जो व्यक्ति अमेरिका जाकर खेती सीखता है वह सुशिक्षित माना जाता है। वैद्य के परिवार में जन्म लेकर यदि एक लड़का वैद्यक का ज्ञान प्राप्त करे तो उसे अशिक्षित माना जाता है। जो लड़का मद्रास में 4 बरस तक डॉक्टरी पढ़ जाता है वह सुशिक्षित माना जाता है। समझ में नहीं आता कि सुशिक्षित और अशिक्षित के बीच स्पष्ट रेखा कहाँ है। जान पड़ता है कि यह रेखा प्रायः अंग्रेजी जानने पर निर्भर है। कबीर, पहले यह तो बताइए कि शिक्षा किसे कहते हैं। धर्मराव, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक उद्योग की और दूसरी ज्ञानार्जन के लिए। इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। आज के स्कूलों का यही दोष है कि वहाँ इन दोनों को मिलाकर खिचड़ी बना दिया जाता है। उद्योग की शिक्षा आजीविका के लिए होती है, ज्ञानार्जन की शिक्षा मनुष्य के हृदय को सुसंस्कृत बनाती है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य भी हृदय का संस्कार करना है, उद्योग की व्यवस्था नहीं। अब देखो कि वह संस्कार भी कहाँ तक हो पाता है। केवल पढ़ना लिखना संस्कार नहीं कहला सकता। यह असंभव है कि जिसने केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त किया हो वह स्वयं पढ़कर समस्त विषयों को जान लेगा। यह पढ़ाई न लोक के काम आती है न परलोक के। प्राचीन काल में हमारे नाटक, कठपुतलियों के खेल, हरिकथा, यक्षगान आदि सब केवल शिक्षा के लिए होते थे। उनसे देश को शिक्षा मिलती थी और कलाकारों को आजीविका। समाज के 2 भाग थे। जो प्रक्रिया एक भाग के लिए शिक्षा का साधन थी वही दूसरे भाग के लिए आजीविका का साधन बनाई गई। ऐसा अपूर्व समाज संगठन और कहीं किसी ने किया है? इस सारे संगठन को जड़ से उखाड़ कर अनिवार्य शिक्षा की बातें करने से क्या लाभ? कबीर, मैंने आपसे शिक्षा का स्वरूप पूछा था, बताइए कि शिक्षा कैसी हो, उसका प्रथम प्रयोजन क्या हो? धर्माराव, शिक्षा का परम प्रयोजन है मनुष्य के मन में स्पष्ट तथा पवित्र भावों का उदय करना। पवित्र भावों का जान लेना ही शिक्षा का प्रधान अंग है। ऐसे पवित्र भाव इंद्रियों की सुव्यवस्थित शिक्षा से ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि संस्कार की प्राप्ति उद्दिष्ट हो तो श्रवण, नेत्र आदि इंद्रियों का निश्चित ज्ञान सबसे पहले उत्पन्न होना चाहिए। भावानुरूप शिक्षा से इंद्रियों में निश्चितता आ जाती है। भावानुरूप संगीत, काव्य आदि से इंद्रियों को सुव्यवस्थित शिक्षा मिलती है। हमारी प्राचीन संस्थाएं इसी प्रकार लोगों को शिक्षा दिया करती थी, जनमन का सुधार किया करती थी। पुस्तकों और नोटबुकों के लिए धन खर्च किए बिना ही मन का सच्चा परिष्कार संभव है। प्राचीन काल में नाटक देखने के लिए पैसा नहीं लगता था, परंतु आज पग पग पर पैसे की आवश्यकता होती है। अनिवार्य शिक्षा के नाम पर अक्षर सिखाने के बदले आज के रद्दी नाटकों और ऊटपटांग फिल्मों को बंद करके उनके स्थान पर अर्थपूर्ण नाटक और सिनेमा दिखाए जाएं तो निश्चित रूप से जनमानस का उचित विकास हो सकता है। आज की अनिवार्य शिक्षा से केवल पाठ्य पुस्तकें लिखने वालों को लाभ हो सकता है, किसी और को नहीं। तुम्हारी बैठक कब होगी? कबीर, कल। धर्माराव, क्यों यह सब बखेड़ा करते हो? यह एक बड़ा प्रवाह है, इसे कौन रोक सकता है? कबीर, लगता तो ऐसा ही है। मेरे कहने पर क्या ये लोग फिर से प्राचीन शिक्षा शुरू करेंगे? क्या यह संभव है? धर्माराव, जब प्रचंड झंझावात चल रहा हो गिरते वृक्ष की निंदा करने से क्या हासिल? गिरते वृक्ष की निंदा करने से क्या हासिल? कुछ दिन बाद राधापति के बुलाने पर धर्मराव उसके घर गया। उसके पहुंचते ही राधापति ने एक व्यक्ति से कहा, शंगल राव, जरा पांव धोने के लिए पानी ले आओ। वह व्यक्ति पानी ले आया और अपरिचित धर्मराव को देखते ही एकदम लजा गया। उसने अपने दुपट्टों को आंचल की तरह समेटा और जल्दी जल्दी भीतर चला गया। राधापति धर्मराव से बोला, यह जरा तृतीया प्रकृति का है। धर्मराव ने कहा, तृतीया प्रकृति तो नहीं लगता, द्वितीया प्रकृति ही लगता है। दोनों भीतर जा बैठे। चंगल राव द्वार की ओर से झांकने लगा। राधापति ने धर्माराव से कहा, क्यों जी, उसकी आंख आप पर पड़ी है, समझे? धर्माराव बोला, मुझ पर केवल उसकी आंख पड़ी है। राधापति ने पूछा, तो फिर क्या बाकी सब कुछ मुझ पर पड़ा है? धर्माराव ने कहा, यह कहाँ का निवासी है? राधापति बोला, उसी से पूछ लीजिए। देखो जी, यहाँ आओ और अपनी कथा सुनाओ। आते क्यों नहीं, यह बड़ा शर्मीला है। आ जाओ भाई, जानते हो महाशय कौन है? यहाँ आए हुए डिप्टी कलेक्टर हैं, तुम्हें 25 रुपये महीना पर रसोईया बनाना चाहते हैं। चंगल राव ने कहा, मैं तो मंगम्मा दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यह कहकर वह किसी नाटक के नीच स्त्री पात्र की भांति अपना चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करने लगा। फिर राधापति के आग्रह पर वह आया और स्त्रियों जैसे हाव भाव करता था और मुस्कराता हुआ कहने लगा, जी मैं गुंटूर के पास वाले गाँव से आया हूँ। हमारी 10 एकड़ ज़मीन थी, उसे मेरे पिता ने बर्बाद कर दिया। राधापति, झूठ क्यों बोलता है? जमीन से अब भी तुझे हर बरस 10 खंडी अनाज मिल रहा है। कमबख्त झूठ ही झूठ बोलता है। चंगल राव, नहीं नहीं 10 एकड़ जमीन आज हो तो आप मुझे चप्पल से मारिए। आप क्या मेरी जमीन छीन लेंगे कि मैं झूठ बोलूं? हाँ जी, तो फिर मेरे पिता चल बसे। राधापति, अरे दुष्ट, तेरे पिता तो भले चंगे जीवित हैं। धर्माराव जी, यह इसका दूसरा रोग है, बाप मर गया है, कल श्राद्ध है, परसों और कुछ है, ऐसे ही झूठ मूठ बकता हुआ रेलगाड़ियों में भीख मांगता है। चंगल राव, क्या मेरे पिता मरे नहीं? जरूर मरे हैं। आप मेरे गांव चलिए, मैं सबूत दिलाऊंगा। ये महाशय कौन है, इनका नाम क्या है? राधापति, इनका नाम है धर्माराव। चंगल राव ने फिर लज्जा का अभिनय किया और लजीली दृष्टि से धर्माराव की ओर देखने लगा। राधापति बोला, क्यों लजाता है, सभी लोग तेरे जीजा लगते हैं। फिर चंगल राव कहने लगा, मैं भूख से तंग आकर रेलगाड़ियों में भीख मांग रहा था, इतने में महाशय राधापति, जो मेरे बड़े जीजा लगते हैं, मुझे विजयवाड़ा ले आए और यहाँ के अनाथालय में शरण दी। उस अनाथालय में मुझ जैसी एक और स्त्री आई हुई थी, वह भी अनाथ थी। राधापति, गधा कहीं का, चुप हो जा। चंगल राव, क्यों जी, मंगम्मा के अनाथ नहीं है, उसका तो नाथ नहीं रहा। धर्माराव, वाह जी, तब तो मानना चाहिए कि चंगल राव के सिर में खोपड़ी है। राधापति, होगी, परंतु जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, इसकी खोपड़ी सिर में नहीं, पेट में है। चंगल राव, जीजा जी, आप समझे नहीं, ये बड़े जिया जी मेरा ठट्ठा किया करते हैं। धर्माराव, माजरा क्या है जी? चंगल राव, जब से मैंने मंगम्मा दीदी को देखा है, उसके प्रति मेरे मन में अपार प्रेम उमड़ाया है। राधापति, मंगम्मा से तुझे प्रेम हो गया? कैसे उटपटांग बात करता है। चंगल राव, प्रेम का अर्थ आप जो समझते हैं वह नहीं, मेरा मतलब है मेरे मन में मंगम्मा दीदी के बाल संवारने की, चोटी लगाने की और उसका खाया हुआ पत्तल निकाल देने की बड़ी इच्छा होती है। राधापति, ओहो, यह भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम जान पड़ता है, प्रेम का यह वर्णन तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। धर्माराव, यह भी प्रेम का एक प्रकार है, यदि कुछ लोग ऐसा ही सोचने लगे तो फिर एक नई प्रथा चल पड़ेगी, उसे लोग चंगल राव स्कूल कहेंगे। इस नए प्रेम तत्व पर एक आध ग्रंथ प्रकाशित हो जाए तो शायद अन्य देशों में भी चंगल राव के अनुयायी पैदा होंगे। राधापति, इतना ही नहीं, चंगल राव में कई विशिष्ट बातें हैं, कुत्ते की तरह भौंक सकता है, कई जंतुओं की आवाज़ों की नकल कर सकता है। एक बार हम नेल्लूर में रात को 12 बाहर घूमने गए थे, वहाँ इसने गीदड़ की तरह आवाज़ करना शुरू किया, तुरंत 10-12 गीदड़ हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। चंगल राव उन्हें देखकर घबरा गया और हमसे लिपटने लगा, भला हम भी इतने गीदड़ों का कैसे मुकाबला कर सकते थे। हमने बहुत धमकाया पर गीदड़ नहीं लौटे, वह तो हमारे भाग थे, जो हाथ में एक टॉर्च लाइट थी, उस टॉर्च को देखकर गीदड़ भाग गए। हमने सोचा इस चंगल राव को साथ लेकर घूमने की अच्छी सजा मिली, फिर इसे कभी अपने साथ नहीं ले गए। अच्छा चंगल राव, किसी जानवर की आवाज़ की नकल करके दिखा तो जरा। धर्माराव, नहीं नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं, रात को आवाज़ें करवा लेना। इसे कुछ वेतन भी देते हैं? चंगल राव, मुझे वेतन नहीं चाहिए जी, हमारे जीजा जी रहें तो काफ़ी हैं, खाना उनके साथ खाता हूँ, कपड़ों की क्या कमी है, बहन मंगम्मा की साड़ियाँ पहनता हूँ और जीजा जी के दुपट्टे से आँचल का काम लेता हूँ। राधापति, खबरदार, मेरे कपड़ों को छूना नहीं, मंगम्मा की साड़ियाँ चाहे जितनी पहन ले। इतने में मंगम्मा वहाँ आकर कुर्सी पर बैठ गई। राधापति ने धर्माराव का परिचय कराया। मंगम्मा बोली, मैंने आपको कभी देखा है, ऐसा याद पड़ता है। धर्माराव अजीब झमेले में पड़ गया, वह सोचने लगा, भगवान आज यहाँ क्यों आ पहुँचा। यहाँ आकर दो अच्छे दर्शन हुए, एक तृतीया प्रकृति और दूसरी राक्षस प्रकृति। फिर धर्माराव किसी काम के बहाने सहसा उठ खड़ा हुआ। राधापति ने जल्दी का कारण पूछा, परंतु धर्माराव कुछ हीले हवाले करता हुआ फिर एक बार आने का वचन देकर वहाँ से चलता बना। जाते जाते उसने सोचा, सारा गांव बदल गया है, सारा संसार बदल गया है, उच्छृंखलता की कोई सीमा नहीं रही, पेट भर खाने को मिल जाए तो बस, कानून की पकड़ में न आने वाला कोई भी अपराध बुरा नहीं समझा जाता, समाज में बहिष्कार नहीं है, पूरी छूट है कि जिसका जी जो चाहे करे, कोई कार्य समाज के हित के विरुद्ध है या नहीं यह देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। ऐसे ही लोग धर्म के संस्थापक बनने लगे हैं। घर जाकर उसने देखा अरुंधति चरखे पर सूत कात रही है। धर्माराव, न जाने कितने दिन से कात रही हो, कम से कम एक साड़ी तो बन ही जाएगी। अरुंधति, आपके लिए धोती और दुपट्टा बनेगा, आप भी सूत निकालें तो ठीक होगा, माँ के लिए कपड़े नहीं हैं, पर आपको तो गांव घर घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। धर्माराव, सुना है कि मेरे पिताजी की दीदी चरखा कातती थी, आज गांधी जी की कृपा से फिर तुम कातने लगी हो। मेरी परदादी का काम नाम भी अरुंधति था, हम सदा प्रशासन करते आए हैं, चरखा कातना हमारा काम नहीं। अरुंधति, बताइए तो आज आपने कैसा प्रशासन किया। धर्माराव, बताऊं कितना बड़ा प्रशासन कार्य किया है मैंने, अब तक दो स्त्रियों को छोड़े हुए एक पुरुष और दो पुरुषों को छोड़ी हुई एक स्त्री के बीच संबंध जोड़ आया हूँ। तुम्हें याद होगा, राधापति नाम के गोरे और लंबे बालों वाले सज्जन एक बार हमारे घर आए थे कि वे और मंगम्मा गृहस्थी चला रहे हैं। अरुंधति, आप तो कहते थे वे महाशय बड़े विद्वान हैं। धर्मराव, विद्वान का अर्थ जो पहले किया जाता था वह नहीं रहा, आज उसका अर्थ कुछ और है। पहले विद्वान अथवा सुशिक्षित उसे कहते थे जो वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करके उसके अनुसार चलता हो। आज विद्वान वह कहलाता है जिसने बीए परीक्षा दी हो या किसी विषय की अच्छी जानकारी रखता हो। उसका विद्वान कहलाना शील अथवा धर्म के प्रति निष्ठा का द्योतक नहीं माना जाता। अरुंधति, कृपा करके उस महापुरुष को फिर हमारे घर न आने दीजिएगा। धर्माराव, यदि वह स्वयं आधम के तो? अरुंधति, तो बाहर चबूतरे पर उससे बातें कीजिए और वहीं से लौटा दीजिए। देवताओं के घर में पिशाचों को न ले आइए। धर्माराव, कौन है वह देवता? तुम? अरुंधति, मैंने अपनी बात नहीं कही। सुविनोनेश्वर स्वामी तो है ना, उस दो फण वाले नाग को शायद आप भूल जाएंगे। हाँ हाँ, भूलेंगे ही, राधापति जैसों की संगत में आने जाने जो लगे हैं तो स्वामी को भुला देने के अतिरिक्त और होगा है क्या? अरुंधति की बात सुनकर धर्माराव चुप हो गया।